लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारों और वयोवृद्धों की सेवा में संलग्न है, विशेष रूप से निर्धनतम देशों में। हमारी प्रार्थना है कि उन्हें सरकारों और स्थानीय समुदायों का पर्याप्त समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान संत पापा फ्रांसिस का पुरोहितों को किया गया संबोधन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभव का जिक्र कर रहे हैं, जिसे उन्होंने इस वर्ष 17 फरवरी को रोम में हुई पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान अपने पुरोहित भाइयों के संग साझा किया था। अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा फ्रांसिस अपने पुरोहित भाइयों से कहते हैं,
Non a caso il male, per distruggere la fecondità dell'azione della Chiesa, cerca di minare i legami.
कलीसिया के फलहित कार्य को नष्ट करने के लिए बुराई दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उन बंधनों को कमजोर करने की कोशिश करती है जो हमें एकता में स्थापित और संरक्षित रखती है। एक विशेष कलीसिया के संग, एक संस्थान के संग और उसके धर्माध्यक्ष के संग, एक पुरोहित के संबंध को मजबूत बनाए रखने हेतु हमें चाहिए कि हम उसके जीवन को विश्वसनीयता और सुनिश्चितता प्रदान करें। उसकी एकता को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आज्ञाकारिता हमारे लिए वह मूलभूत निर्णय होती है जो हमें उन बातों को स्वीकारने की मांग करती है जिसकी चाह हमसे की जाती है। आज्ञाकारिता एक तर्क वितर्क, ध्यान से सुनने की प्रक्रिया और कुछ परिस्थिति में तनाव के क्षण हो सकते हैं, लेकिन यह विभाजन का कारण ना हो। पुरोहितों से इस बात की मांग की जाती है कि वे अपने धर्माधीशकों के लिए प्रार्थना करें और खुले रूप में सम्मान, साहस और ईमानदारी से अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करें। यह उसी भांति धर्माधीशकों से इस बात की मांग करती है कि वे नम्रता का प्रदर्शन, सुनने की योग्यता, स्वयं में चीजों को परखने की क्षमता और अपने में मदद किए जाने हेतु खुला रहें। यदि हम इस संबंध को बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप में विकास करेंगे। दूसरे पुरोहितों के संग हमारी निकटता, यह हमारे लिए तीसरी तरह की निकटता है। संत पापा ने कहा, हमारे लिए खासकर धर्माधीशकों के संग हमारी एकता के आधार पर तीसरी निकटता भ्रातृत्व में निकटता से उत्पन्न होती है। यीशु ख्रीस्त वहाँ उपस्थित रहते हैं जहाँ भाई बहने एक दूसरे को प्रेम करते हैं। जहाँ दो और तीन से अधिक मेरे नाम में जमा हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ।
Anche la fraternità come l'obbedienza non può essere un'imposizione morale esterna a noi. Fraternità è scegliere deliberatamente di cercare di essere santi con gli altri e non in solitudine.
भ्रातृत्व आज्ञाकारिता की तरह ही बाहर से किसी में थोपी नहीं जा सकती है। भ्रातृत्व का अर्थपूर्ण ज्ञान अकेले नहीं अपितु दूसरों के संग पवित्रता में बढ़ने का एक चुनाव है। एक अफ्रीकन कहावत, यदि आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक जाने की चाह रखते हैं तो दूसरों के साथ चलें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कलीसिया अपने में धीमी है, जो अपने में सही है। फिर भी मैं इसके बारे में विचार करना चाहूंगा, यह उनका धीरे चलना है जिन्होंने अपने लिए भ्रातृत्व का चुनाव किया है। वे उनके साथ भी चलते हैं जो अपने में सबसे पीछे हैं, लेकिन यह सदैव भ्रातृत्व में होता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि भ्रातृत्व की निशानी वे हैं जो प्रेम करते हैं। संत पौलुस कुरुंथियों के नाम अपने पहले पत्र में हमारे लिए प्रेम की राह को रखते हैं। यह हमारे लिए एक निश्चित भाव में भ्रातृत्व के उद्देश्य की ओर इंगित कराता है। यह हमारे लिए सबसे पहले धैर्य की शिक्षा करने की बात कहता है, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम उनके बोझ को अपने ऊपर लेते, उनके साथ दुख सहने हेतु अपने को तैयार रखते हैं। वहीं धैर्य के विपरीत हम उदासीनता को पाते हैं, जहां हम दूसरों के संग एक दूरी उत्पन्न करते हैं, जिससे हम दूसरों के जीवन से अपने को अलग रख सकें। बहुत से पुरोहित हैं जो अकेलेपन, खोए रहने के नाटकीय स्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। इस भांति हम उनमें धैर्य हेतु अयोग्यता को पाते हैं। वास्तव में यह हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम दूसरों से टीका टिप्पणी की आशा करते हैं, अच्छाई या कोमलता की नहीं। दूसरे हैं जो हमारे जीवन में होने वाली अच्छी चीजों को देखकर आनंदित नहीं हो सकते हैं, या हम स्वयं दूसरों के जीवन में घटित हो रही अच्छी चीजों से अपने को खुश होता नहीं पाते हैं। दूसरों के जीवन में अच्छी चीजों को देखकर खुश होने की अयोग्यता, संत पापा इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं, यह अपने में ईर्ष्या है जो हमारे बीच में मौजूद है। यह प्रेम की शिक्षा के मार्ग में एक बाधक है, एक पाप मात्र नहीं जिसे हम अपने पाप स्वीकार में बतलाते हैं। पाप तो आखिरी परिस्थिति है, यह हमारे लिए ईर्ष्या के मनोभाव से आती है। ईर्ष्या पुरोहितों के समुदाय में बहुत अधिक व्याप्त है। ईश्वर के शब्द हमें इसके बारे में कहते हैं, यह एक विध्वंसक मनोभावना है। शैतान की ईर्ष्यालुता के कारण ही दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ। ईर्ष्या विध्वंस का द्वार है। हमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता है। ईर्ष्या हमारे पुरोहितों में भरी हुई है। ऐसा भी नहीं कि हर कोई अपने में ईर्ष्यालु है, नहीं, लेकिन ईर्ष्या की परीक्षा हमारे लिए आती है। हमें इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ईर्ष्या के कारण गपशप की शुरुआत होती है। संत पापा कहते हैं,
per sentirsi parte della comunità dell'essere noi non c'è bisogno di indossare maschere che offrono di noi un'immagine vincente।
समुदाय के समूह का अंग होने हेतु हमें मुखौटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम दूसरों के लिए अधिक सुंदर लगें। हमें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में शेखी बाजी, अपने में चाटुकारिता को धारण करना, या उससे भी बुरा, अपने में ढीठ या कठोर होना, जहां हम अपने पड़ोसी के लिए सम्मान की कमी को पाते हैं। हम अपने बीच में याजकीय धौंस को कई रूपों में पाते हैं। यदि एक पुरोहित के लिए कोई चीज है जिस पर वह घमंड करे, तो वह ईश्वर की दया है, क्योंकि अपने पापों, कमजोरियों और खामियों की बहुतायत भरी चेतना उसे इस बात को अनुभव करने में मदद करता है कि पापों की भरी स्थिति में ईश्वर का प्रेम हमारे लिए और अधिक उमड़ कर आता है। यह पहला और सबसे सुनिश्चित संदेश है जिसे वह लाता है। एक पुरोहित अपने जेहन में इस बात को धारण करता है, वह अपने में ईर्ष्या नहीं कर सकता। भ्रातृत्व प्रेम अपने को अपनी तरह से दूसरों पर नहीं थोपता है, या अपने में क्रोधित होता, या दूसरों के संग द्वेष रखता है, मानो कि मेरे भाई या पड़ोसी ने मुझे किसी बात पर धोखा दिया हो। जब मैं दूसरों की नीचता का सामना करता हूँ, तो मैं अपने को उसमें डुबोए रखने का चुनाव नहीं करता, जो शिकायत करने मुझे उसके प्रति निर्णय लेने का एक आधार बनता हो, चाहे यह मेरे लिए आनंद का कारण क्यों ना बनता हो। सच्चा प्रेम सच्चाई में आनंदित होता है। यह सच्चाई का तिरस्कार नहीं करता। इसके साथ ही गपशप, निंदा, शिकायत के माध्यम भाई बहनों की गरिमा को ठेस पहुंचाने को वह गंभीर पाप के रूप में देखता है। इनकी उत्पत्ति ईर्ष्या में होती है, जो उस हद तक भी जाती है जो एक पद की चाह में दूसरों को अपमानित करने में भी पीछे नहीं रहती है, और यह अपने में बहुत खराब बात है।
fare vescovo a qualcuno, tante volte riceviamo informazioni ammalate di invidia।
जब हम धर्माध्यक्ष नियुक्ति हेतु किसी के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं संग्रहित करते, तो बहुधा हम उस पुरोहित के बारे में जहर भरे ईर्ष्यालु बातों को पाते हैं। यह हमारे याजकीय वर्ग की एक बीमारी है। आप में बहुत से लोग गुरुकुल के प्रशिक्षक स्वरूप कार्यरत हैं। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभवों को साझा किया। यह इसकी 6वीं कड़ी थी। हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
जीवन में हर पल गाऊंगा मैं गीत तेरा, अपने सुरों में प्रभु रचूंगा मैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 31 मई को माता मरियम का अपने कुटुम्बनी एलिजाबेथ से मुलाकात के पर्व के अवसर पर उनके सद्गुणों पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रार्थना करने का आह्वान किया। संत पापा ने 31 मई के ट्वीट संदेश में लिखा, मरियम का विश्वास नबी के समान है। खुद अपने जीवन से मरियम मानव इतिहास में ईश्वर की उपस्थिति की ओर एक भविष्य सूचक चिन्ह है। उनके करुणा में हस्तक्षेप की ओर जो दुनिया के तर्क को हराता, दीनों को उठाता और शक्तिशालियों को नीचे गिरा देता है। संत पापा फ्रांसिस उन लोगों के लिए आशा के चिन्ह स्वरूप मई माह के अंतिम दिन 31 मई को रोजरी माला विनती करेंगे जो यूक्रेन एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों में जारी युद्धों से पीड़ित हैं। 31 मई को संत पापा फ्रांसिस रोम समय अनुसार शाम 6 बजे रोम के संत मरिया मेजर महागिरजा घर में शांति की रानी मरियम के सामने रोजरी माला विनती करेंगे। उन्होंने दुनिया के हर क्षेत्र के विश्वासियों को आमंत्रित किया है कि वे रोजरी माला विनती में भाग लेकर शांति के लिए प्रार्थना करें। रोजरी माला विनती को वैटिकन के आधिकारिक चैनलों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाएगा। संत पापा ने कहा, हम माता मरियम के माध्यम से ईश्वर से शांति के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे जिसकी पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। संत मरिया मेजर महागिरजा घर में आज संत पापा फ्रांसिस के साथ रोजरी माला विनती में भाग लेने वालों में एक यूक्रेन की युवा माता ओक्साना बोयको भी शामिल हैं, जो रोम के संत सोफिया समुदाय की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि रोजरी प्रार्थना में शक्ति है। हम उम्मीद करते हैं कि शांति की रानी हमारी प्रार्थना सुनेंगी और युद्ध जिससे कभी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता समाप्त हो जाएगा। एक फोन कॉल में उन्होंने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि उनके 4 बच्चों में से 2 संत इजिदियो समुदाय द्वारा संत सोफिया गिरजाघर में आयोजित शांति का स्कूल में भाग ले रहे हैं। 4 बच्चों में से सबसे छोटा 2 साल का और सबसे बड़ा 10 साल का है। उन्होंने कहा, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम संत मरिया मेजर महागिरजाघर में पोप के साथ रोजरी माला विनती करेंगे। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैटिकन ने सोमवार को दंडमोचन की घोषणा की जिसको दादा दादी एवं बुजुर्गों के लिए द्वितीय विश्व दिवस के अवसर पर प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार को कलीसिया में पापों की क्षमा एवं करुणा से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार वैटिकन न्यायाधिकरण के प्रेरित प्रायश्चित विभाग ने एक आज्ञाप्ति जारी की है जिसमें दादा दादी एवं बुजुर्गों के लिए द्वितीय विश्व दिवस में भाग लेने वालों हेतु कई दंडमोचन की घोषणा की गई है जो इस साल रविवार 24 जुलाई को पड़ेगा। दंडमोचन शुदा काग्नि की आत्माओं के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। दादा दादी, बुजुर्ग एवं विश्वासी जो प्रायश्चित एवं परोपकार की भावना से प्रेरित हैं, वे 24 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस के नेतृत्व में वैटिकन में मनाए जाने वाले समारोह में भाग ले सकते हैं, अथवा वे उन समारोहों में भी भाग ले सकते हैं जिनको विश्व के विभिन्न हिस्सों में उस दिन आयोजित किया जाएगा। विश्वासी उस दिन व्यक्तिगत रूप से या संचार माध्यमों के द्वारा असमर्थ व्यक्तियों, बीमार, परित्यक्त या विकलांग लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार होने के कारण या किसी गंभीर बीमारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से विश्व दिवस के समारोह में भाग ले सकते हैं। करुणावान ईश्वर को अपनी प्रार्थना, जीवन के दर्द एवं पीड़ा चढ़ा सकते हैं। विशेष कसन पापा के शब्दों के साथ एवं संचार माध्यमों द्वारा समारोहों को प्रसारित किए जाते समय दंडमोचन प्राप्त करने की शर्तें हैं: पापसी का संस्कार में भाग लेना, मिस्सा सुनना एवं संत पापा के मतलब के लिए निवेदन करना। प्रेरित प्रायश्चित विभाग जिसने अज्ञाप्ति को घोषित किया, उसने पुरोहितों से आग्रह किया है कि वे पाप स्वीकार सुनने हेतु अपने आप को तत्परता एवं उदारता से उपलब्ध करें, ताकि कलीसिया की कुंजी की शक्ति से प्राप्त की जाने वाली कृपा को प्रेरितिक उदारता द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने 2021 में विश्व दादा दादी एवं बुजुर्ग दिवस की घोषणा की है, जिसको जुलाई के अंतिम सप्ताह में येसु के नाना नानी संत अन्ना एवं संत जाकिम के पर्व के निकट मनाया जाता है। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरज घर में कार्डिनल सोदानो के अंतिम संस्कार की धर्मविधि संपन्न की। कार्डिनल सोदानो का निधन 28 मई को हुआ। 31 मई को संत पेत्रुस महागिरज घर में पौत्र मिसा के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने स्वर्गीय कार्डिनल सोदानो के अंतिम संस्कार की धर्मविधि संपन्न की। वैटिकन राज्य सचिव के रूप में 15 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं शांति पहल में वैटिकन कूटनीति का नेतृत्व करने वाले 94 वर्षीय कार्डिनल सोदानो कुछ समय से वैटिकन के अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक आप्रवासन आयोग को प्रेषित अपने संदेश में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत के अनुरूप मानव अधिकारों और मानव गरिमा के सम्मान को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अप्रवासियों एवं शरणार्थियों की देखभाल करने की प्रेरित गतिविधि को बरकरार रखने का प्रोत्साहन दिया है। संत पापा ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक आप्रवासन आयोग के सदस्यों को संदेश भेजा, जिसकी समिति की आम सभा सोमवार को शुरू हुई। इस अवसर पर संत पापा ने कुछ मूल बातों पर जोर दिया, जब आयोग के सदस्य 3 विशेष बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं: आयोग की समिति का गठन, नई विधियों को मंजूरी देना और आने वाले वर्षों के लिए इसके संचालन संबंधी दिशा निर्देश का निर्धारण करना। आयोग के गठन पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने गौर किया कि इसकी स्थापना 1951 में संत पापा पियूस 12वें के द्वारा हुई थी, ताकि अप्रवासियों एवं शरणार्थियों की प्रेरितिक देखभाल हेतु विश्व भर के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के साथ संपर्क किया जा सके। संत पापा ने संदेश में कहा कि आयोग दूसरे सामाजिक एवं कलीसिया संगठनों से भिन्न है, यही कारण है कि इसे प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियों में समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु एक परिषद के रूप में शामिल किया गया है। अतः परिषद उन धर्माध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करता है जो आयोग से मिलकर काम करना चाहते हैं एवं आप्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत, सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं एकीकरण के लिए तैयार हैं। संत पापा ने आयोग को 70 सालों से अधिक सेवा देने के लिए धन्यवाद दिया, जिसने कलीसिया को विशेषकर यूक्रेन में युद्ध के कारण भाग रहे विस्थापित लोगों की चुनौतियों का सामना करने में मदद दिया है। उन्होंने गौर किया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आश्रय की खोज करने वाले शरणार्थियों एवं आप्रवासियों के रूप में लाखों लोग हैं, जिन्हें स्वागत, सुरक्षा एवं प्रेम की अति आवश्यकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।